نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، محترم بزرگوں اور بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شمائل ہیں، آپ کی جو عادتیں ہیں اور آپ کی جو صفات ہیں، اس پر مستقل الگ سے کتابیں لکھی ہوئی ہیں. حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مستقل کتاب ہے اس پر، شمائل ترمذی کے نام سے. اور بھی دوسرے بہت سے محدثین نے شمائل لکھے ہیں، حضرت امام ترمذی نے بھی شمائل لکھی ہے. شمائل ترمذی پڑھائی جاتی ہے ہمارے پاس دینی مدارس میں، نصاب میں داخل ہے. شمائل ترمذی میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکرہ متواصل الاحزان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سوچ میں رہنے والے اور مسلسل غمگین رہنے والوں میں سے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت بیان فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ آپ دائم الفکرہ تھے. دائم کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ سوچا پھر چھوڑ دیا، کچھ سوچا پھر چھوڑ دیا، ویسا نہیں، کنٹینیو، مسلسل ہمیشہ فکر میں رہنے والے. اور سوچ اور پلاننگ الگ چیز ہوتی ہے اور حزن الگ چیز ہے. سوزش دل کی، جلن دل کی، رنج اور غم جو ہے وہ الگ ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر کے اعتبار سے بھی دائم تھے اور غم کے اعتبار سے بھی دائم تھے، مسلسل تھے. متواصل، تواصل کا مطلب ایک کے پیچھے دوسرا، دوسرے کے پیچھے تیسرا لگانا، وصل کرنا، ملانا. متواصل الاحزان، آپ حزنوں میں ہمیشہ رہنے والے تھے. تو آپ کے شمائل میں یہ دو صفت سب سے پہلے بیان کرنے سے مراد غالباً آپ کی اس باطنی کیفیت کو ظاہر کرنا ہے جس کا اثر آپ کے ظاہر پر ہمیشہ رہتا تھا. آدمی کے اندرون کا اثر آدمی کے بیرون پر ہوتا ہے، جیسا اندرون ویسا بیرون. بیرون سے آدمی کا اندرون چھلکتا رہتا ہے، ایکٹیویٹیز بتا دیتی ہے کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے. آدمی بہت خوش ہے، بشاش ہے، تو اس کی بات چیت سے، اس کے رہن سہن سے، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اندر اس کے کیا چل رہا ہے. فکر میں ہے، پریشانی میں ہے، ٹینشن میں ہے، کہ اس کی باہر کی حالت بتا دیتی ہے کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے. آدمی کو بشر اس لیے بھی کہتے ہیں اور کہ اس کے بشرے سے، یعنی اس کے اپیرینس سے، اس کے ظاہر سے اس کی حالت کا پتہ چل جاتا ہے. اس کا چہرہ بشرا بتا دیتا ہے کہ وہ کیا ہے، اندر سے وہ کیا چیز چل رہی ہے اس کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت گویا یوں سمجھ لیجئے میرے دوستوں کہ دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے سب سے پہلا سبق ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کا سب سے پہلا حصہ ہے. ہر دعوت کے کام کرنے والے کو اور دعوت کے ذمہ دار ساتھیوں کو، پرانوں کو، جو فکر لینے والے ساتھی ہیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت اپنے آنکھوں کے سامنے رکھنی ہے. آپ دائم الفکرہ تھے، آپ ہمیشہ سوچ میں رہتے تھے. علماء نے یہی فرمایا ہے کہ یہ فکر آپ کی کئی کی تھی، یہ فکر آپ کی امت کی تھی، آپ کو امت کی فکر تھی. اور اتنی زیادہ یہ فکر تھی کہ اللہ پاک آپ کو تسلی دیتا رہتا تھا. क्योंकि आपकी आपकी ये फिक्र के साथ आपका गम इतना लग जाता था कि आपकी जान को खतरा लाहिक होता था, क्योंकि ज़्यादा सदमे में आदमी इंतकाल कर जाता है। तो लअल्लका बाकिउ नफ्स का अल्लाह यकुनु मोमिनीन, ये लोग ईमान नहीं लाएंगे तो आप अपने आप को हलाक कर लेंगे क्या? कुछ लोगों के लिए ईमान नहीं लाना तय है, आप ज़्यादा गम में मत पड़ोगे, मतलब था। कुछ लोगों के लिए जैसे ईमान लाना तय है, तो कुछ लोगों के लिए ईमान न लाना भी तय है। ये हमारी हिकमत का हिस्सा है, इसलिए मेहनत तो पूरी करो, लेकिन आप तवक्को ये ना रखो कि 100% लोग मान जाएंगे। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह सिफत मेरे दोस्तों हमारे अंदर आ जाए, दावत के काम करने वाले साथियों में आ जाए। जो काम करने वाले साथी फर्स्ट उसमें हैं, पहली रो में हैं, सफ़े अव्वल के साथी होते हैं, अपने अपने मस्जिद के, अपने अपने शहर के, अपने अपने इलाकों के, और जो कि हमारे यानी हमारे अपने दानिश के एतबार से आप हजरात का ग्रुप है। तो हमें सबसे पहले अपने अंदर ये चीज़ लानी है कि फ़िक्र आ जाए हमारे अंदर। अब सर पे इज्तिमा सवार है, बिल्कुल 2-3 दिन रह गए हैं, ये समझिए कि शुरू हो ही गया है कि एतबार से, अब क्या है कल ने परसों के बाद तो मशवरा खुद वहाँ है, तो हमारे पास गया वक्त बिल्कुल नहीं रहा। लेकिन हमारे चेहरे बुशरे से नहीं समझ में आ रहा कि सर पर इज्तिमा है, हमारे हमारी एक्टिविटीज से नहीं समझ में आ रहा कि सर पर इज्तिमा है। क्योंकि सर पर इज्तिमा वाला आदमी ये जिस जो फिक्र में और गम में रहने वाला है, उसका तासुर इस अंदाज का नहीं हो सकता। हंस रहे भी, बोल रहे भी, खुशगप्पियाँ भी हो रहे हैं, जोकिंग भी हो रही है, खाना पीना हो रहा है, टहलना हो रहा है, बाहर जाना हो रहा है, आना हो रहा है। तो इसका मतलब हमारे अंदर बहुत कमी पाई जा रही है। तो हमें थोड़ा सा अगर अंदरूनी तौर पर वो कैफियत नहीं है, तो अपने अंदर वो कैफियत बतकल्लुफ लाना है। खुद से अगर नहीं है वो चीज़, तो थोड़ा तकल्लुफ में लाना है। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने रो, अगर तुमको रोना ना आए तो रोने की सूरत बनाओ, फैलम तबकू फतबाको, अगर रो ना सको तो रोने की सूरत बनाओ, रोने वाला अंदाज अख्तियार करो, रोने वाला मुंह बनाओ, रोने वाली आवाज़ निकालो, रोने की सूरत तो बनाओ कम से कम। तो अगर हमारे पास वो फिक्र नहीं है तो फिक्र की सूरत बनाना है, वो गम नहीं है तो वो गम की शक्ल बनाना है, एक फिक्र लेना है। अगर हम वैसा करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात आली से उम्मीद है कि हकीकतन जो है ना वो फिक्र भी आ जाएगी और हकीकतन वो गम भी आ जाएगा जैसे आना चाहिए। हमारे पास जो लोग पुराने हजरात हैं अच्छी तरह जानते हैं, बोइनपल्ली जो शहर का एक हिस्सा है, वहाँ के जो जिम्मेदार थे भाई यूनुस साहब, पहले वो एक दूसरी जगह होते थे, मैं उनके पास उनके साथ रहा हूँ, शुरू में तबलीग में इब्तदा में उनके साथ ही रहा हूँ, 1 साल तक रहा हूँ। अजीब ही आदमी था वो, उनकी एक खसूसियत थी, वो खसूसियत ये थी कि आप दुआ करना शुरू करो वो रोना शुरू कर देते थे, जैसे दुआ करने के लिए हाथ उठाते रोना शुरू हो जाते थे। तो मैंने उसे बोला कि भाई आप ऐसे कैसे रोते हैं, जैसे आपके हाथ में है ये। तो कह लेंगे हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हमें बाजाब्ता सिखाया है ये, बहुत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में बहुत रहे हुए थे, हैदराबाद से दिल्ली कई मरतबा 4 महीने की साइकिलों की जमात में गए हुए हैं वो। हैदराबाद से दिल्ली का मतलब 1700 किलोमीटर, यहाँ से समझ लीजिए कि न्यूयॉर्क जो है वो साइकिलों की जमात में 4 महीने की जाते थे, और वो भी उस ज़माने में अपनी साइकिल, खुद ही टायर रख लेना, खुद ही ट्यूब बना लेना, खुद ही हवा भर लेना, खाना खाने के लिए चने मुरमुरे चने खा लेना, फुटाने खा लेना। तो वो बता देते कि हज़रत मौलाना यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हमें बाज़ाब्ता रोना सिखाया। हज़रत मौलाना यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत का अंदाज़ दावत का काम करने वालों के लिए बड़ा ही अजीब था। हर साथी को वैसा प्रिपेयर करते थे जैसा कि काम का तकाजा है। मैंने आप लोगों को इससे पहले भी सुनाया था, भोपाल एक जगह है, भोपाल के करीब में रायसीन एक जगह है, एक चिल्ला हमारा उधर भी लगा था। तो रायसीन में जब हम गए तो वहाँ पर बड़ी बड़ी उम्र के लोग जमात में लगे हुए, और वो हज़रत मौलाना यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह के वक्त के लगे हुए थे, हज़रत मौलाना यूसुफ़ साहब की ख़ास तरबियत थी उनको। तो हमारी जमात चुके, हम नौ उम्र आदमी, हमारी तरबियत की बहुत ज़रूरत, हमको बहुत सी चीज़ें लोग देख के समझाते थे, बताते थे कैसा होता है वैसा होता। तो तो वो बुड्ढों ने बड़ी अजीब अजीब बातें उस मौके पर कही हमसे, जो अभी तक जहन में बैठ गई हैं। उस पर उन्होंने बताया हमको कि हज़रत यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह जिस जिस एतबार से हमको मशक कराते थे कि इस ज़माने में तो सोच भी नहीं सकता, फरमाया कि हमको हज़रत मौलाना ने मशक कराई थी 3 दिन तक इस्तिंजा नहीं करने की, 3 दिन तक हम न पेशाब को जाएं ना बैतुल्ला को जाएं, कहेंगे रोको। और हमें आदत है, उन्होंने कहा, 6 बुड्ढे थे वो, छः छः बड़े थे, बड़े बड़े पुरानी उम्र के लोग थे, हम समझते हैं 80 के आसपास के थे। उन्होंने बताया कि हमको आदत है, अगर आप हमें 3 दिन के लिए घर में बंद कर देंगे तो हम बैतुल बड़ा बड़ा इस्तिंजा छोटा इस्तिंजा दोनों के बगैर रह सकते हैं, हालांकि हम अब रोज़ाना ही जाते हैं, लेकिन हमें इसकी प्रैक्टिस है कि अगर 3 दिन तक रोकना पड़ा तो हम रोक लें। और फरमाया कि ये हमको हज़रत यूसुफ़ साहब ने सिखाया था और इसकी मशक करवाई थी। और ये फरमाया कि ये मशक इसलिए कराई जा रही है कि जब तुम अल्लाह के रास्ते में जाओगे तो जिस जगह पर तुम जाओगे वहाँ के हालात कैसे रहेंगे नहीं मालूम, हर चीज़ की आदत होना चाहिए, तुम्हें इसकी भी आदत होनी चाहिए कि अगर इस्तिंजा का मौका ना मिले तो इस्तिंजा को रोक सको। ऐसी बारीक बारीक जुजियात हज़रत मौलाना यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह दावत का काम करने वालों को सिखाते थे, समझाते थे। जब तक हज़रत मौलाना यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह थे, मस्जिद में, बंगले वाली मस्जिद में, मरकज़ में पंखा नहीं था, फैन नहीं था उसमें। बहुत लोगों ने ऑफर किया था कि गर्मी बहुत ज़्यादा, दिल्ली में बहुत सख्त गर्मी पड़ती है, सारे जिस्म में जू पड़ जाते हैं कपड़ों के अंदर, इतनी गर्मी पड़ती है, तो कहने लगे हम पंखा लगवा देते हैं। कहने लगे अगर इनको पंखे की आदत होगी तो ये क्या काम करेंगे दीन का, ये फरमाते थे सुनो, अगर इन लोगों को पंखे की आदत हो गई तो ये दीन का क्या काम करेंगे। तो दीन का काम जोहद चाहता है, असल में जोहद मशक्क़त का नाम है, मशक्क़त बर्दाश्त करने की आदत होना। हज़रत इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह वो जामा मस्जिद दिल्ली की, जामा मस्जिद का मैदान बहुत बड़ा है, जामा मस्जिद दिल्ली का ओपन हिस्सा जो है ना बहुत बड़ा है, अपनी ये जो मस्जिद है, अपनी जो जामा मस्जिद है, इस जामा मस्जिद के 4-5 जामा मस्जिद आते खाली सहन में, तो इतने हिस्से पे गर्मी के ज़माने में पत्थर के ऊपर जिसमें पैर रखने से छाले पड़ जाते हैं, हज़रत इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह बगैर चप्पल के उस पर टहला करते थे दोपहरी में। उनसे पूछा जाता कि हज़रत आप ये क्या कर रहे हैं, कहने लगे मशक कर रहा हूँ अल्लाह के रास्ते की मशक कर रहा हूँ। फिर उसी एतबार से उन्होंने मुजाहिदे भी किए, सब दुनिया को पता है कि कैसे वो जो है ना वाला बालाकोट तक गए अल्लाह के रास्ते में लड़ते लड़ाते, मशक कर रहा हूँ। तो जिन लोगों को जिस तरह की फिक्र होती है मेरे भाइयों, वो उस तरह की चीज़ों को अपनाते हैं, उस तरह की मशकें करते हैं वो। तो आदमी के अंदर की फिक्र आदमी के बाहर को बताती है और बाहर की एक्टिविटीज़ अंदर की तर्जुमानी करती हैं। तो हमारे बड़े ऐसे थे, आप अंदाज़ा फरमाइए कि उनको 3-3 दिन के लिए इस्तिंजा रुकवा दिया कि अगर तुमको अल्लाह के रास्ते में कहीं जाना पड़ गया और इस्तिंजा का मौका नहीं रहा तो तुम ऐसी जगह पर तबलीग में जाओगे नहीं कि वहाँ के, तो वहाँ पर तो पानी नहीं है, वहाँ पे तो इस्तिंजा की सहूलत नहीं है, वहाँ पे तो तहारत खाने नहीं है, ऐसा नहीं होगा। ऐसे ही हज़रत मौलाना यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, वो मैं यूनुस भाई का किस्सा याद आया तो सुना रहा था आपको, कि वो दुआ शुरू, दुआ के लिए हाथ उठे, चाहे वो दूसरा दुआ कर रहा हो चाहे वो खुद दुआ कर रहा हो, टप 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 रोना शुरू कर देते थे जब भी दुआ हम करते थे, छोटा जलसा हो बड़ा जलसा हो उनको रोना आ जाता था और रोना शुरू कर देते। मैंने पूछा आप कैसे रो सकते हैं यार, हम तो सोचे तो भी रोना नहीं आता। कहने लगे हमको मौलाना यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने सिखाया था। फिर कैसे सिखाया होगा, कैसे उनको आ गया हो, वो बतकल्लुफ़ रोते 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 वो एक ऐसा अंदाज बन गया अंदरून में कि जब चाहा रोना शुरू कर दिया, अल्लाह पाक के लिए अल्लाह के सामने रोना शुरू कर दिया। फ़इल्लम तबकू फ़तबाकू, अगर फिक्र हमारे अंदर वो नहीं महसूस कर रहे हम तो फिक्र बतकल्लुफ़ करना है। पहले आदमी बतकल्लुफ़ करता है फिर बेतकल्लुफ़ वो चीज़ हासिल हो जाती है। अगर गम हमको गम हमारे अंदर खुद से नहीं उबल रहा तो बतकल्लुफ़ गम करना है, सोच सोच के फिक्र करना है, सोच सोच के दिल को जलाना है, क्योंकि गम में दिल जलता है, गम दिल की सोजिश का नाम है, जलन का नाम है। और ये जितनी ज़्यादा होती है रहमत इलाही उतनी मुतवज्जे होती है। हुज़्न और फिक्र ये जितना ज़्यादा होगा हमारे अंदर उतना ज़्यादा रहमत इलाही मुतवज्जे होगी। इज्तिमा के एतबार से जो फिक्र हमारे अंदर होना है उसमें हमारे घंटों लगना है, इज्तिमा के लिए जो गम हमको होना है उसमें हमारे घंटों लगना है, सुबह शाम सोते उठते बैठते काम करते हुए बीवी बच्चों में सब में एक एक आदमी को लगा हुआ होना चाहिए कि क्या होगा, कैसे होगा, जमातें ज़्यादा से ज़्यादा कैसे निकलेंगी, इज्तिमा कैसे कामयाब होगा, तकाजे कैसे पूरे होंगे, ये होना ज़रूरी। उम्मत की फ़िक्र इसी वजह से क्या है, पैदल जमातों में जाने को या ये कि जमातों में उमूमी गश्त में जाने को और लोगों में जो है ना लोगों में घुसने को चलने को एक जो कहा जाता है उसकी एक वजह ये भी है कि जब उम्मत के हालात आदमी देखता है तो दिल में सोजिश पैदा होना लाजमी है, क्योंकि उम्मत है ही इस तरह के हालात में, हजारों हजारों बंदगाने खुदा, लाखों बंदगाने खुदा, मुसलमानों में मुसलमान कहलाने वाले, हर हर मुल्क के, हर हर इलाके के, हर हर कौम के, हर हर नस्ल के, अरब मुल्कों के जोन सा चाहे, और एक अरब नहीं है दसियों अरब मुल्कों के, अजम मुल्कों के, मशरिक के, मगरिब के, शुमाल के, जुनूब के, सब जगह के मुल्कों के लोग रहते हैं और हजारों हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, और वो मेल्ट हो रहे हैं, वो घुल रहे हैं नमक की तरह से, वो घुल रहे हैं, उनकी जिंदगियां उनकी उनका दीन घुल रहा है बर्फ की तरह से। हतम आलिमिया नदवी जब आए थे तो उन्होंने फरमाया था कि ये मुल्क जो है ना वो अक्कालुल उमम है, उम्मतों को खा जाने वाला है, ये मुल्क अक्कालुल उमम है, उम्मतों को खा जाने वाला है। देखो तुमको ना खा जाए कहीं, तुमको ना खा जाए, क्यों? इसलिए कि इस्लाम की एक खसूसियत है ये है कि ये अल इस्लाम यालू वला युला, ये गालिब होने के लिए, मगलूब होने के लिए, ये खुद खाने के लिए, किसी की गिजा बनने के लिए नहीं है। ये मूसा अलैहिस्सलाम के आसा की तरह से बातिल को खा जाना इसका काम है, नहीं है कि बातिल इसको खाए। मगर जब हक रहेगा ही नहीं, शक्ल के एतबार से, नाम के एतबार से रहेगा, हकीकत के एतबार से बातिल से मुमासलत पूरी हो जाएगी, बातिल तो बातिल को खा जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों बहुत फिक्र की ज़रूरत है। अभी अमीर साहब हालात सुना रहे थे असर के बाद के, भाई यहाँ पे खुद, अब खुद शिकागो के अंदर हमारे एक एक यूनिवर्सिटी में हैं? कितने कितने हज़ार बच्चे हैं, 5-5 हज़ार जिस यूनिवर्सिटी में बच्चे मुसलमान हैं, वहाँ का मुसल्ला, ये अपने मशवरा रूम जो है छोटा उत्ता मुसल्ला है कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर, वो भी नहीं भरता, उसमें भी कोई नहीं आता मिलने के बाद नमाज पढ़ने के वास्ते। अरबों का यही हाल है, बोस्नियंस का यही हाल है, सूडानियों का यही हाल है, सोमालियों का यही हाल है, और दूसरे मुल्कों का, इथियोपिया के मुल्कों का यही हाल है, इंडिया पाकिस्तान का यही हाल है, बांग्लादेश का यही हाल है, पूरी दुनिया का, यहाँ के मुसलमानों का जो यहाँ माइग्रेट होके आ गए पहले से, वो ज़माने से हैं वो, और जो इनके बच्चे हैं, इनकी नस्लें हैं, जब इतने बड़े शहर के अंदर जहाँ हम रहते हैं या दीन का काम इतने सालों से होता है वहाँ की ये सूरत है, तो बताइए पूरे पूरे मुल्क के अंदर जो बड़े बड़े शहर पाए जाते हैं उसका क्या हाल होगा। जब ये हाल है तो फिर साउथ अमेरिका के जो मुल्क पाए जाते हैं उनका क्या हाल होगा। फिर ये बात है तो आप दूसरे एशिया के मुल्कों में चले जाएँ, उधर ऑस्ट्रेलिया की तरफ चले जाएँ, उधर चाइना और जचनिया की चाइना रशिया की तरफ चले जाएँ, क्या हाल होगा मेरे दोस्तों, पूरी उम्मत मुस्लिमा किस हालत में है। तो इसका कितना गम मेरे अंदर है, अगर नहीं है तो गम गमगीन होना है बेतकल्लुफ, इसकी कितनी फिक्र मेरे अंदर है, अगर ये फिक्र नहीं है तो मुझे बेतकल्लुफ फिक्र करना है। जितनी ज़्यादा फिक्र होगी उतना ज़्यादा मेरे दोस्तों काम होगा, अल्लाह पाक काम लेगा, अल्लाह पाक रास्ते खोलेगा, दुआ की तरफ बंदा मुतवज्जे होगा। जितनी फिक्र होगी उतना बंदा अपने को आजिज समझ के कि मैं तो कुछ नहीं कर सक रहा, मुझसे तो कुछ नहीं हो रहा, या अल्लाह ये क्या हो रहा है, दुआ में पड़ जाएगा। और असल के एतबार से देखा जाए तो पूरी तरह थकने के बाद में दुआ पड़ेगा, दुआ में पड़ जाएगा, पूरी तरह मुजाहिदा करने के बाद दुआ में पड़ जाएगा, और दुआ की तरफ मुतवज्जे घंटों रहेगा। आम हालतों में हज़रत मौलाना यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह जो दुआ में होते थे वो उनको देखने वालों ने बताया कि 3 घंटे से लेकर 3.5 घंटे उनकी दुआ रात में होती थी, बड़ी रातों में। मौलाना इमरान खान साहब रहमतुल्लाह अलैह भोपाल के बड़े ज़िम्मेदारों में से थे, वो तबलीग वालों को कहा करते थे कि तुम लोग जब खुद तनहाई में तो 5 मिनट की भी नहीं करते, जलसे में दुआ कराओ तो कौन कौन घंटे की करते हो। उस पर फरमा रहे थे कि
लोगों के दरमियान में दुआ मुख्तसर ही होनी है, और हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह की पौन घंटे की दुआ लोगों में होने की वजह से मुख्तसर थी। और फरमाया कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उनकी दुआ रात में उनके अपने मरकज में 3 घंटे से ज्यादा की होती थी। तो जो बंदा 3 घंटे से ज्यादा रोजाना दुआ में हाथ उठाया हुआ होता था वो मजमे में पौन घंटा करेगा तो वो उसकी तो मुख्तसर ही हुई ना। वो हम लोगों की बहुत रगड़ाई करते रहते थे, गोशमाली करते रहते थे, कान पकड़ते रहते थे कि तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, क्योंकि वो खुद भी तबलीग के जिम्मेदारों में से थे, लोग बुरा भी नहीं मानते थे, उनकी बात लेते भी थे, उस पर वो बता रहे थे। तो हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह ने कि आप दिल दिल का दर्द महसूस कीजिए कि आम नॉर्मल हालतों में 3-3 घंटे वो बंदा रात में रोने में रहता था, हाथ उठाया हुआ होता था, 4-4 महीने अपने घर के अंदर नहीं जाते थे, 3-3 महीने 4-4 महीने घर के अंदर नहीं जाते थे, मरकज में रहते हुए। मरकज में एक दरवाजा है जो उनके घर में खुलता है, मरकज में एक दरवाजा है जो उनके घर में खुलता है, जो अभी तक भी है। उनके बारे में आता है कि वो 4-4 महीने में नहीं जाते थे अंदर, जिस दिन आ जाते थे उस दिन घर में ईद हो जाती थी, बच्चे खुश, बड़े खुश, छोटे बच्चे खुशी में आपस से बाहर हैं, बड़े भी खुश हैं, औरतें भी खुश हैं, कोई घर में कुछ बनाने की तैयारी हो रही, कुछ पकाने की तैयारी हो रही। वो पूछ दे कि क्या किस्सा है, तो हज़रत यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा आ जाती है, वो कहती थी कि क्या किस्सा है, याद है तेरे को कितने दिन हुआ आ गए यहाँ पे, तो अब इतने दिनों के बाद, इतने महीनों के बाद आया है तो बच्चों का तो यह हाल हो गई होगा। तो वो फरमाया करते थे, सुना कि अगर मैं यहाँ का दरवाजे में घर है बल्कि अगर इस तरीके से मैं आया करूँगा, अल्लाह को क्या मुँह दिखाऊंगा कि जिनको मैं 4-4 महीने के लिए अल्लाह के रास्ते में भेजता हूँ और मैं खुद रोजाना घर के अंदर जाया करूँगा, तो अल्लाह पाक को मैं क्या मुँह दिखाऊंगा, ये फरमाते थे। उसका असर, उसका उनकी फिक्र का अंदाज़ा फरमाए मेरे दोस्तों। दावत का काम अल्लाह पाक ने जिनके ज़रिए से लिया, जिनके ज़रिए से पूरी दुनिया में अल्लाह पाक ने दावत को चमका दिया, चला दिया, उनकी जो फिक्रें थीं उस एतबार से अल्लाह पाक ने उनको कबूल फरमाया, उनकी मेहनत जो मुजाहिदा जो था उसके एतबार से अल्लाह पाक ने उनको कबूल फरमाया, उनसे काम लिया वैसा, उनकी दुआओं में अल्लाह ने वैसा असर रखा, उनकी मेहनत में अल्लाह ने वैसा असर रखा, चार दांगे आलम के अंदर अल्लाह पाक ने बात चला दी, मशरिक़ व मगरिब को, शुमाल और जुनूब को मुनव्वर फरमा दिया, ईमान से और ईमान की मेहनतों से, ईमान के माहौल से, ईमानी अमाल से। जैसी फिक्रें होती हैं वैसे असरात होते हैं। हमारी जैसी फिक्र होगी, हमारा जैसा गम होगा वैसा होगा। इज्तिमा हमारे सर पे आ गया और हमें जिस तरह की फिक्र होनी चाहिए थी नहीं है, तो फिक्र लाना है अपने अंदर। और ख़ास मौका जो हुआ करता है मेरे दोस्तों उसके वास्ते, तो सीरत मुबारक में गौर करने से पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद मरतबा आपे से बाहर हो जाते थे। सबको पता है कि बदर में क्या हुआ था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू सुफियान के काफिलों को रोकने के लिए 313 सहाबा को लेकर बदर की तरफ चल पड़े। अबू सुफियान बहुत ही सूझबूझ के आदमी थे, उनको फौरन अंदाज़ा हो गया, उन्होंने देखा कि दरख्त के नीचे मैंगनियाँ पड़ी हुई हैं ऊँट की, उन्होंने मंगवाया उसको, तो बुलवा के दिखाया, कहने लगे ये मैंगनियाँ तो यसरब की हैं, मदीने की हैं, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर मदीने के लोग हैं। फौरन पहचान गए कि हमारा कोई ताकुब कर रहा है, लिहाजा पूरे काफिले को लेके, जिसमें माले जंग था, असल में सामान हर्ब था, लड़ाई का सामान था, वो तैयारी करने के वास्ते वो मुल्क शाम से ख़रीद के लेके जा रहे थे, वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो उसको रोकना चाह रहे थे, इस वास्ते कि असल जब आप सबब पे कंट्रोल करोगे तो असल चीज़ का कंट्रोल में आएगी। सब ले सामान्य हर्ब ले के लड़के लड़ने के लिए सामने सामने आ जाने के बाद आप अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करके लड़ने को जा रहे हैं, बल्कि तो ये तरीका नहीं होता, ये दुनियादारुल असबाब है, हर चीज़ को उसको मौके माहिर से पकड़ना पड़ता है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मकसद के लिए जंग बदर की तरफ चल पड़े थे अबू सुफियान के काफिले को रोकने, मगर अबू सुफियान को जैसे पता चला उसने समंदर का दूसरा रास्ता लिया, पूरा निकल गया उधर आगे। और इससे पहले के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर में जाके वापस होते, पहुंच गए ये लोग मदीना मक्के मुकर्रमा से, लोगों को लेके 1000 लोगों को लेके पहुंच गए। ये 313 थे, इनके साथ सामान नहीं था, जंग का सामान नहीं था इनके पास, तलवारें इनके पास में नहीं थी, सवारियां इनके पास में नहीं थी, और 313 सहाबा एकदम सेलेक्टेड हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवर तरबियत याफ्ता, आपकी मेहनत का निचोड़, आपकी मेहनत का खुलासा और जौहर जो तैयार हुआ था मक्के मुकर्रमा की ज़िंदगी में और मदीना मुनव्वरा पे पहुंचने के बाद में जो आपका वक्त था, ये सारे के सारे जो है ना बिल्कुल असल लोग थे, वो लोग ठहरे हुए हैं, दुश्मन आ गया सामने और मुसल्ला होके आ गया और हजार की तादाद में आ गया। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि तुम चाहते थे कि कोई कांटे वाला न मिले और हम चाहते थे कि कांटे वाले से तुमको भिड़ा दें। वतवद्दून अन्ना गैर अदाति शौकती तकूनु लकुम, गैर अदाति शौका, शौका कांटे को कहते हैं, तुम चाहते थे कि बगैर कांटे वाले से तुम्हारा साबिका हो, हमने कांटे वाले से भिड़ा दिया तुम। वयुरीदुल्लाहु अन युहिक्कल हक्क बिकलिमातिही, अल्लाह पाक चाहते थे कि हक को गालिब करें, हक को साबित करें। अगर तुम्हारे ही जैसे लोगों से या बगैर कांटे वालों से तुम भिड़ जाते और तुम गालिब आ जाते तो इहकाक हक ना होता। तुम बेसरो सामान थे, वो सरो सामान से लदे हुए थे, तो इस तरीके से तुमको गालिब करने का प्लान हमारा था, इसलिए हमने वो सूझ भी अबू सुफियान को हमने ही दी कि तू चला जा उधर से। वो उधर से आ गया, दुश्मन को मुसल्ला लेके आ गया 1000, उसमें अबू जहल भी, उसमें फला भी, उसमें फला भी, हत्ता के हत्ता अब्बास भी उसमें थे, सबको पता है क्योंकि अबू जहल की दोस्ती में आ गए थे। दोस्ती में आदमी कहाँ कहाँ तक चला जाता है, दोस्ती से बहुत पकड़ा जाता है आदमी, दोस्ती में आदमी बहुत दूर तक निकल जाता है, दोस्ती में रियायत करने पर आ जाता है, इतनी बड़ी रियायत करने पर भी आ जाता है। समझने की बातें होती हैं कुछ, हर दोस्ती सोचने वही नहीं वैसे निभाने की नहीं होती। वो जब ये सूरत सिचुएशन हो गई ना, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर क्या गुजरी होगी मेरे दोस्तों अंदाज़ा नहीं कर सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खेमा डलवा दिया अपना और उसमें आप नमाज में मशगूल हो गए, इबादत में लग गए। हुजूर की फिक्र का ये हाल था, आप पर गम का ये हाल था, आपका आप पर बोझ का ये हाल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज्बात में एक जुमला तक कह गए, हदीसों में मशहूर है, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हादिहिल इसाबा लन तुबद, परवरदिगार अगर ये मर गए आज तो कभी ज़मीन पर तेरी इबादत नहीं होगी। ये वो जौहर है, ये वो खुलासा है मेरी मेहनत का, नबी आखिरुज़्ज़मा की मेहनत का, इमामुल अंबिया की मेहनत का, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन की मेहनत का, ये जौहर है जो तेरे सामने खड़ा हुआ है। इन तुहलिक हादिहिल इसाबा, अगर ये जमात गई फिर नहीं होगा तेरा कोई नाम लेने वाला। और इस कैफियत के साथ आपकी दाढ़ी मुबारक तर, आंसू बहे जा रहे हैं और जमीन का हिस्सा भीग गया है सजदे में, सिद्दीक अकबर ने देखा तो बर्दाश्त नहीं हुई, हजरत सिद्दीक अकबर ने कमर पकड़ के उठा लिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या मोहम्मद हस्ब, या रसूलल्लाह हस्ब, इंशाअल्लाह अल्लाह अल्लाह बस है आपके लिए, बस करो, मैं नहीं बर्दाश्त कर सक रहा हूँ आपकी इस कैफियत को, मैं नहीं बर्दाश्त कर सक रहा हूँ। हजरत सिद्दीक अकबर ने कमर पकड़ के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदे में से उठा लिया। वो आप अंदाज़ा फरमाइए सदमे का, उस गम का, उस फिकर का, फिर तो आपको मालूम ही है कि क्या हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे फरिश्तों को उतार दिया, गैबी मदद आ गई और जो जो चीज़ दिखाई अल्लाह पाक ने, तो फिर तो सारी दुनिया को पता चल गया कि जब अल्लाह तबारक व तआला मदद करने पर आता है तो मदद कैसे फरमाता है। तो आपने मेहनत पूरी की, फिर उसके बाद रुजू एहतमाम, और फिर उसमें जो दर्द और गम था वो पूरा अल्लाह के सामने रखना, उस अल्लाह पाक ने उसके असरात भी जाहिर फरमाए। तो दीन की मेहनत करने वालों को मेरे दोस्तों, दावत का काम करने वालों को, जो चीज़ चाहिए सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंदरून से, जो जिस चीज़ की नकल मुझे और आपको करना है, आपकी सिफात और उसके असरात हमारे अंदर आएंगे तो अल्लाह पाक हमसे कुछ काम लेगा। हम चाहते हैं कि अल्लाह पाक हमसे काम ले, हम चाहते हैं दीन का काम हो, हम चाहते हैं दीन के काम को जमाऊ नसीब हो, हम चाहते हैं दीन के काम को तरक्की हो, हम चाहते हैं दीन का काम पूरे आलम में फैले, हम चाहते हैं इस मुल्क के अंदर दीन का काम फैले, हम चाहते हैं दीन के ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान अल्लाह के रास्ते में जाने वाले बने। अब जैसी हमारी फिक्र और हमारा गम होगा वैसे उसके असरात पड़ेंगे। इसलिए इस मजमे को तो मेरे दोस्तों ये फिक्र उस अंदाज में लेने की ज़रूरत है कि 3-4 दिन इज्तिमा को रह गए, मैंने क्या किया, मैंने कितनी नमाज़ें पढ़ी अब तक, मैं रोज़ाना कितनी नमाज़ पढ़ के अल्लाह पाक से मांग रहा हूँ, कितनी सलातुल हाजिर पढ़ के इज्तिमा की कामयाबी के लिए मांग रहा हूँ, घर वालों को मैं कितना मुतवज्जे किया हुआ हूँ, रात मेरी कैसी गुजर रही है, दिन मेरा कैसा गुजर रहा है, मशगूलियत में मेरा क्या हाल है, खाने पीने में मेरा जी कितना लग रहा है। ऐसा हो गया तो कैसे हो गया ये इज्तिमा, ज़ाहिर तौर पर इज्तिमा हम लोगों पर ही है, हम ही लोग सफ़े अव्वल के जिम्मेदारों में से हैं इस शहर के। अब अगर हम लोगों की फिक्र का ये हाल होगा तो हमारे बाद वाले की फिक्र उससे कम होगी, उसके बाद वाले की उससे कम होगी, और जब फिक्र ही ऐसी होगी तो फिक्र के बच्चे होते हैं, फिक्र की औलाद होती है, फिक्र के बच्चे होते हैं, فکر سے نسل چلتی ہے افکار کی، فکر سے نسل چلتی ہے معانی کی، فکر سے نسل چلتی ہے مجاہدوں کی، فکر سے نسل چلتی ہے دین کے پھیلنے کی، یہ فکر ہی کے بچے ہوتے ہیں سارے کے سارے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکرہ متواصل الاحزان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سوچ میں رہنے والے اور ہمیشہ غم پالنے والے تھے، غم کے اندر رہا کرتے تھے. یہ اسی لیے بیان کیا گیا تاکہ حضور کی سیرت پر نظر رکھنے والے اور حضور کی سیرت کو اپنا کے اپنے آنکھوں کے سامنے رکھ کے خود بھی چلنے والے، امت کو چلانے والا جو گروپ ہے اس کو پتہ چلے کہ بات شروع کہاں سے ہے، کہاں سے ہم کو شروع کرنا ہے، ہماری الفبا کہاں سے ہے. ہماری الفبا یہاں سے ہے میرے. اللہ کرے کہ اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے، آپ لوگوں کو بھی توفیق دے. تھوڑا سوچو میرے دوستو، تھوڑا فکر فرماؤ. اب اس وقت جو ٹائم تھوڑا سا رہ گیا ہے، اس تھوڑے سے وقت میں بھی بہت کچھ اللہ کو منوایا جا سکتا ہے، بہت کچھ فکریں کی جا سکتی ہیں، دعائیں کی جا سکتی ہیں، صلاۃ الحاجت پڑھی جا سکتی ہے، توجہ اللہ کی جا سکتی ہے، محنت میں حصہ لیا جا سکتا ہے، محنت کے عزائم خود بھی کر سکتے ہیں، محنت کے عزائم کرا بھی سکتے ہیں. حق تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرت کو بھی توفیق دے.